मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 21 अगस्त 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और दोस्तों आप सबके साथ ही विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन एक नौजवान साथी का जिन्होंने एकेडमी की 21 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इन नौजवान साथी का नाम है मनोज शर्मा। आप विश्वास नगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। तो मनोज आपका मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपसे केरल में जो बाढ़ की स्थिति है मुख्य विषय के अंतर्गत इस पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। और मेरी ये जो चर्चा होगी ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आइए इससे पहले हम कुछ दूसरी खबरों को देख लेते हैं। सच पूछे तो आज की जो ज्यादातर खबरें हैं वो अखबारों के माध्यम से हैं, फिर भी न्यूज में कुछ हैं। और एक तो बड़ी खबर जो है मित्रों वो आपने दंगल फिल्म आपको याद आ गई होगी जब आपने ये खबर सुनी कि विनेश फोगाट ने एशियाड में गोल्ड मेडल पहलवानी में कह लीजिए अगर हम अपनी भाषा में बात करें रेसलिंग में दिलाया, भारत को दिलाया कुश्ती में विनेश फोगाट। और आपको शायद याद हो कि दंगल फिल्म में जो हमारे महावीर फोगाट हैं उनकी जो बेटी गीता फोगाट और जो दो उसमें लड़कियां थी, सच पूछे तो विनेश जो फोगाट हैं वो उन्हीं की चचेरी बहन हैं। और जो आपके हमारे जो महावीर फोगाट साहब हैं वो इनके चाचा हैं या ताऊ हैं, मैं थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है। लेकिन इन्होंने ही विनेश को दीक्षित किया है यानी कि वो उनके गुरु भी रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में जो महिला खिलाड़ी हैं कितने अलग अलग क्षेत्रों में और जबरदस्त सफलताएं हासिल करती जा रही हैं। तो ये एक कंटेंट है कि विमेन एम्पावरमेंट कि दृष्टि से जब कोई प्रश्न आए तो उसमें इस तथ्य को आप शामिल कर सकते हैं। एक दूसरी खबर है जिसे अखबारों में दोस्तों बहुत जगह नहीं मिल पा रही है वो ये कि जो 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है वो मॉरिशस जो अफ्रीका महाद्वीप में है उसका एक आइलैंड है, इस पर हम लोगों ने बात की थी, वहां कल समाप्त हो गया है 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में। देखिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में तो इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं लेकिन जो दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है उसमें हो सकता है कि इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं। दोस्तों न्यूज में एक बात थी जो हमारे गडकरी जी मिनिस्टर हैं उन्होंने नदियों को जोड़ने का मामला उठाया और राज्यों से ये अनुरोध किया है कि जो नदियों को एक दूसरे से जोड़ने की जब स्थिति आती है तो राज्यों के अपने अपने कुछ रिजर्वेशंस होते हैं जिसके कारण काम रुक जाता है। तो उन्होंने अनुरोध किया है कि थोड़ा सा इस मामले में जो समस्याएं हैं उन्हें आपस में मिलकर के सुलझाएं और 5 परियोजनाएं अभी ऐसी चल रही हैं। तो यहां खासकर जो टॉपिक है नदियों को जोड़ने वाला ये महत्वपूर्ण है और उधर ही मैं आपका ध्यान इसके माध्यम से दिलाना चाह रहा हूं। दोस्तों कल अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जो सर्व पार्टी प्रार्थना सभा जो हुई थी उसमें एक शब्द आपने सुना कि जो अटल बिहारी वाजपेयी थे वो अजात शत्रु थे। मुझे विश्वास है कि जो हिंदी के स्टूडेंट हैं वो अजात शत्रु का अर्थ जानते होंगे लेकिन मुझे इस बात की भी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट न भी जानते हों, तो पूरी माफीनामे के साथ मैं इसका अर्थ बताता हूं। अजात का मतलब है जिसका जन्म ही नहीं हुआ। किसका जन्म नहीं हुआ? शत्रु, यानी कि जिसके शत्रु का जन्म ही नहीं हुआ। सरल शब्दों में जिसका कोई भी शत्रु नहीं था। और इसी वाक्य को आप पॉजिटिव तरीके से कह दीजिए कि हर कोई जिसका मित्र था और वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनका कोई भी प्रत्यक्ष दुश्मन नहीं था चाहे वो कितना भी विरोधी पक्ष का व्यक्ति क्यों न हो। और संसद में एक दूसरे की कितनी भी एक लोग आलोचना करते हो लेकिन मन से सभी एक दूसरे के का सम्मान करते थे, मित्रवत व्यवहार करते थे। अजात शत्रु का ये अर्थ है। फ्रेंड्स मैं दो और सूचनाओं के बारे न्यूज के बारे में आपसे चर्चा करूंगा इससे पहले कि मैं मुख्य विषय पर आऊं। एक जो रोबोट है, आप देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोट, इन दोनों के बारे में मॉडर्न साइंस में अब काफी चर्चा होने लगी है। अब तो थिंग्स ऑफ इंटरनेट और भी दूसरी चीजें आ गई हैं, क्लाउडिंग कंप्यूटिंग वगैरह भी आ गई है। तो खासकर रोबोट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी चीज हो गई है जो हमारे दैनिक जीवन में अब प्रवेश कर चुकी है और अब हम इनका उपयोग भी करने लगे हैं। रोबोट ठीक है, भारत में उतना ज्यादा नहीं आया है, लेकिन पश्चिमी देशों में तो जो डेवलप्ड कंट्री है वहां काफी कुछ आ गया है। और एक रोबोट का नाम है ऑटोनोमस सोशल रोबोट। ऑटोनोमस सोशल रोबोट, उसका इस्तेमाल तो बकायदे प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए और यहां तक कि चाइल्ड थेरेपिस्ट के रूप में भी किया जाने लगा है, मतलब चाइल्ड थेरेपिस्ट के लिए, यानी कि वो बच्चों की थेरेपी करता है, यानी कि उन्हें सलाह देता है, उनकी काउंसलिंग करता है कह लीजिए। तो उस पर स्टडी की गई है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ब्रिटेन में स्टडी हुई है, आपको एक तथ्य बता रहा हूं, निबंध वगैरह में आपके ये काम आ सकता है। और उसमें यह पाया गया है कि जो बच्चे रोबोट के संपर्क में हैं, उनकी जो क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं हैं, वो कमजोर पड़ गई हैं और उनका जो बिलीफ है, उनका जो विश्वास है या उनकी जो धारणाएं हैं, वो बिल्कुल वही बनती जा रही हैं जो रोबोट कहते हैं, यानी कि रोबोट ने जो कुछ भी कह दिया उसके विरोध में जाकर के वो कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, कुछ कह ही नहीं पाते हैं। जबकि दूसरी तरफ ये स्टडी आई है कि यदि यही बात कोई व्यक्ति बताता है तो बच्चे उसके विरुद्ध बात करते हैं, बोलते हैं, प्रश्न पूछते हैं और फिर जब सही लगता है तो स्वीकार करते हैं, अदरवाइज अस्वीकार भी कर देते हैं। ये एक बहुत अच्छी स्टडी आई है, यानी कि इसके आधार पर आप कह सकते हैं कि बच्चों की थेरेपी या एजुकेशन के लिए रोबोट का इस्तेमाल किया जाना सही नहीं है, आप इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, जो दूसरी खबर है, हिंदुस्तान का एडिटोरियल कमेंट भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, वो है आसमान में कूड़ा घर। देखिए, जो जब आपके पर्यावरण पर बात होती है तो आप एक दो साल पहले का अनसॉल्व्ड पेपर देखेंगे तो उसमें महासागरीय पर्यावरण पर बात की गई है, महासागरीय सुरक्षा और आसमान की सुरक्षा, जब सिक्योरिटी पर बात होती है तो उस सुरक्षा की भी बात की जाने लगी है। तो ये अंतरिक्ष में जो पर्यावरणीय संकट आ रहा है उस पर एक बहुत अच्छा एडिटोरियल कमेंट है। इसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण की गई हैं कि स्पेस में भी, अब अंतरिक्ष में भी बहुत ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है और नासा का अनुमान है कि सर 5 लाख इस तरह के टुकड़े अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। और ये जो जंक है, जो कूड़ा कचरा है, ये दो कारणों से आता है। पहला तो यह है कि जो उल्का पिंड, जो आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्राकृतिक उल्काएं हैं, वो वहां आ जाती हैं, तो अब बट नेचुरल है कि उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो वहां घूमते रहते हैं। लेकिन इनकी एक खासियत ये होती है कि जो प्राकृतिक उल्का पिंड है, ये सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं, मतलब सूर्य की कक्षा में घूमते हैं। तो सूर्य की कक्षा में जो भी घूमेगा उसका स्थान बिल्कुल निश्चित हो जाएगा, वो भटकेगा नहीं, अपने स्थान पर घूमता रहेगा, हमें पता है कि अच्छा ये इसका चक्र है। और फिर दूसरा ये होता है कि अगर ये वहां से भटक कर कभी ये पृथ्वी की कक्षा में आ गए, यानी कि हमारे पास पहुंचने लगे, तो फिर ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, यानी कि राख बन जाते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा है। लेकिन ये जंक के साथ क्या होता है? पहली बात तो ये है कि ये सूर्य की कक्षा में न घूम करके पृथ्वी की कक्षा में घूमते हैं, तो ये भटकते रहते हैं, इनका जो परिक्रमा पथ है वो स्थिर नहीं होता, तो भटक रहे हैं। और जो स्पेस उपग्रह जा रहे हैं, जो अंतरिक्ष यान जा रहे हैं जिसमें मनुष्य भी बैठा हुआ है, सोचिए कि अगर उससे ये टकरा गए तो क्या हालत होगी। और इनकी जो स्पीड भी होती है 17,500, सोचिए कि मील प्रति घंटे, 17,500 माइल प्रति घंटे, लगभग आप यूं कह लीजिए कि 3,500-4,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमते हैं, सोच करके नहीं, 25,000-30,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये घूमते हैं, डेढ़ गुना मान लीजिए, 1.6 समथिंग एक मील का किलोमीटर होता है। क्या हालत होगी उस अंतरिक्ष यान की? और दूसरी चीज ये है कि जैसे उल्का पिंड तो जब पृथ्वी पर गिरने लगते हैं तो जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये जो जंक है ये नष्ट नहीं होते, क्योंकि इनको बनाया ही इस तरह से जाता है कि ये सूर्य की गर्मी से पिघल ना सके, नष्ट ना हो सके, तो ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तो ये मैंने दो आप तीन आपको रीजन बताए हैं, इसे आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं मुख्य विषय पर, जो केरल में बाढ़ को लेकर है। इसके दो पक्ष हैं फ्रेंड्स। पहला पक्ष है कि केरल में जो बाढ़ आई है उसके कारण क्या है, किस तरह से जो प्रशासन भी है इसकी उपेक्षा कर रहा है। मैं आपको एडिटोरियल कमेंट भी आज दैनिक भास्कर का प्रोवाइड कर रहा हूं, उसमें दो समितियों के नाम के उल्लेख हैं कि पहले एक गाडगिल समिति बनी थी, गाडगिल पैनल ने यह कहा था कि जो पश्चिम घाट के जो 6 राज्य हैं उनको सतर्क किया था और उन्होंने बताया था कि 13,000 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो संवेदनशील है, वहां किसी तरह का डिस्टर्बेंस न किया जाए, लेकिन राज्यों को स्वीकार नहीं हुआ। राज्यों ने फिर एक दूसरा एक वैज्ञानिक कस्तूरी रंगन समिति बना दी, उन्होंने उस 13,000 को घटा करके 10,000 के आसपास कर दिया, 9,993 किलोमीटर, और उसको भी सरकार ने उस तरीके से स्वीकार नहीं किया और पत्थर वगैरह की खुदाई और माइनिंग्स वगैरह सब जारी रही और उसी के नतीजे में ये सारी चीजें हो रही हैं। तो ये कुछ कंटेंट होते हैं जो सिविल सर्विस आपसे एक्सपेक्ट करता है। आप सीधे सीधे सुपरफिशियल बात मत कीजिए कि नदियों में गाद भर गई है और बाढ़ में बांध बहुत ज्यादा भर गए हैं और जंगलों की कटाई हो रही है, ये सब चीजें तो है ही है बाढ़ आने के कारण, लेकिन आपको कुछ तथ्य बताने चाहिए, खासकर जो उस स्टेट से रिलेटेड हैं, जैसे कि केरल के बारे में उन्होंने बताया, राइट। इसका जो दूसरा पक्ष वो है कि देखिए, जब केरल में अब बाढ़ आई हुई है तो उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये बिखरे हुए तथ्यों के रूप में है। एनडीआरएफ की टीम लगी हुई, आप जानते हैं, सेना के तीनों टुकड़ियां, मतलब तीनों जो सेना है, वायु सेना, जल सेना और हमारी थल सेना, वो सब के सब लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कुछ और भी चीजें शामिल हैं जिन पर आपका ध्यान होना चाहिए, और वो है पब्लिक। मैं पढ़ा होगा कि वहां के जो मछुआरे हैं, समुद्र में वो मछली पकड़ने जाते हैं, उनको सन ऑफ सी कहा जाता है, समुद्र पुत्र है वो, और वो पूरे एरिया को जानते हैं, तो सब ये अपनी अपनी नावें ले लेकर के निकल गए हैं लोगों को बचाने के लिए, और बहुत लोगों को बचा रहे हैं और फ्री में कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो कह रहे हैं बस आप तो हमारे नाव के लिए डीजल भर दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो इसके पुत्र हैं, हम तो जानते हैं पानी में रहना जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज आप इसी के साथ ही पाएंगे कि जो कंपनीज हैं जैसे पेटीएम और जो दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने भी अब यहां सहायता देना शुरू कर दिया है, जिस रूप में भी वो सहायक हो सकते हैं वहां वो मदद पहुंचा रहे हैं। इसे कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप कह लीजिए कि एक अच्छा काम हो रहा है, तो ये भी एक आपको नया तथ्य मिलेगा। आपने अखबारों में पढ़ा होगा और जिनका वीडियो वायरल भी हो रहा है कि एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर और उनके जो एसडीएम थे, जो उनके सहायक थे, वो भी आईएएस ऑफिसर थे, वो दोनों किस तरीके से सहायता काम में लगे हुए और बकायदे अपने कंधों पर चावल की बोरियां ले लेकर के राहत शिविरों में पहुंचा रहे हैं। ये नौकरशाही का वहां आपको एक बड़ा मानवीय और सेवाभावी चरित्र दिखाई दे रहा है। ये सारी चीजें दरअसल हमको पढ़ते समय पकड़ने की चीज होती है। नागरिक लगे हुए हैं, कुछ स्टूडेंट है, कुछ इंजीनियर है, उन्होंने पावर बैंक बनाया है क्योंकि बिजली फेल हो गई है, लोगों के मोबाइल काम नहीं कर रहे, तो ऐसे में क्या करें, तो उन्होंने अलग किस्म का एक पावर बैंक बनाया है, उसे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि उनका मोबाइल काम करना शुरू कर सके और वहां लोग पहुंच जाए। सैटेलाइट का इसमें बहुत जबरदस्त रूप से उपयोग किया जा रहा है, उस सैटेलाइट के चित्रों से यह पता लग रहा है कि कहां कहां लोग फंसे हुए हैं, कहां कहां घर नष्ट हो गए हैं, कहां कहां किस तरीके से पहुंचा जा सकता है। तो इस तरीके से मित्रों आप देखिए कि सरकार तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो सिविलियंस हैं, जो समाज के जो दूसरे अंग हैं, वे भी इस काम में भरपूर रूप से लगे हुए हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और सच पूछे तो पॉलिटिकली यही रियल डेमोक्रेसी भी है। पॉलिटिकली तो चलिए हम नहीं कहें कि पॉलिटिकली यही डेमोक्रेसी है, कल्चरली, सांस्कृतिक रूप से, वैचारिक रूप से यही सच्चा लोकतंत्र है। मुझे लगा कि इस व्याख्या को मुझे आपके सामने रखनी चाहिए ताकि आप भी लोकतंत्र को थोड़ा सा और विस्तारित रूप से व्याख्यायित करने की स्थिति में आ सके। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। मैं आपको न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूं, आप सब अपने अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, उन्हें धन्यवाद देता हूं। एक बड़ा प्यारा सा मेल मिला है मुझे अमित कुमार का, जो इलाहाबाद से हैं, उनका जन्मदिन भी कल या परसों रहा होगा। तो चलो अमित, आपको हमारे सभी प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मैं अपनी ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से आपके सुख और सफलता की कामना भी करता हूं। इन्होंने एक बड़ा खूबसूरत वाक्य लिखा, ये हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और उन्होंने लिखा कि सर मेरा जन्मदिन तो ठीक है आज है, लेकिन सही बात तो यह कि मेरा जो जन्म हुआ था वो 15 दिन की उन क्लासेस में हुआ था, यानी कि मैं एक नए रूप में वहां इमर्ज हुआ। अमित, बहुत प्यारी भावना तुमने लिखी और तुम्हारा यह वाक्य मुझे बहुत ज्यादा आत्मसंतोष दे गया, हमारी पूरी टीम को आत्मसंतोष दे गया। अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो इससे बड़ा रिवार्ड, इससे बड़ा अवार्ड हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। इस खूबसूरत वाक्य के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दो दूसरे मित्रों ने ईमेल लिखे, उनके कुछ नाम हैं, हनी सिंह, धर्मेंद्र सिंह ठाकुर, दीपेश काले मुंबई से, पूजा सिंह, अब्दुल तवाब, करमजीत कौर भटिंडा पंजाब से, रजनी शुक्ला और डॉक्टर एच के रोहिल्ला। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इस सूचना के साथ, और सूचना यह है कि कल चूंकि गजेटेड हॉलीडे है तो कल डेली ऑडियो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा। परसों फिर मुलाकात होगी और फिर ढेर सारी बातें होंगी। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा, मेरा अभिवादन स्वीकार करें, आपकी छुट्टी का दिन बहुत खुशनुमा तरीके से व्यतीत हो। नमस्कार।